ओम शांति। आज हमारे आदरणीय वरिष्ठ राजयोगी भ्राता मोहन सिंगल भाई जी हमारे मध्य उपस्थित है। हम तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप 50 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और आपने बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद, आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ONGC में सुपरिटेंडिंग जियोफिजिस्ट के पद पर कार्यरत रहे। 28 वर्षों की सर्विस पूरी करने के बाद आपने पूर्ण रूप से अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए तो आप ईश्वरीय सेवाओं के साथ जुड़े और साथ में आपने बिहार, आसाम और गुजरात में इस संस्था की कई शाखाएं खोलने के लिए आप निमित्त बने। 1985 में आप अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान आपके निर्देशन में भारत के विभिन्न प्रांतों से 12 पद यात्राएं निकाली गई। उस समय आप यूथ विंग के सचिव पद पर उपस्थित थे। वर्तमान समय आप संस्था के ज्ञान सरोवर परिसर में एकेडमी कोऑर्डिनेटर के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 1988 से आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपके निर्देशन में 7 एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन देश विदेश में ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। आप मानव उत्थान के लिए आपने कई देशों की यात्राएं भी की है और अपनी निस्वार्थ सेवाओं से जन जन को आपने प्रभावित किया है। ऐसी महान हस्ती आज हमारे मध्य उपस्थित है और जब हमारे साकार बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 को, तो उस समय बाबा के उस अंतिम घड़ियों में आप 2 दिन बाबा के साथ रहे और आपने बाबा की उस कर्मातीत अवस्था को बहुत अच्छी तरह आपने देखा, अनुभव किया। तो आज उन अनुभवों को आप हमारे मध्य शेयर करेंगे, इसलिए आज आपका विषय भी यही है, मम्मा बाबा के संग के अनुभव। तो हम सुनेंगे दाता मोहन सिंगल भाई जी से। एक अनाउंसमेंट है, कुछ लिटरेचर का सामान किसी का कैरी बैग मिल चुका है, जिसका भी हो वो स्टेज के पीछे से ले जाए और क्लास के बाद जब आप जाएंगे तो अपनी अपनी कुर्सी सीधी करके जाएंगे।
ओम शांति। हम सभी बाप दादा के द्वारा दिए गए ज्ञान से अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थी हैं। हर एक मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है, विजय चाहता है और जितना जितना इस मार्ग में चलते चलते उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती चली जाती है, उतना ही वो खुशी का और अनुभव करता चला जाता है। शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया, जो कहा, ब्रह्मा बाबा ने उसे प्रैक्टिकल करके दिखाया और इस कारण से ही आज हमारे सामने केवल एक ही आत्मा है जिसने अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया और वो है साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। इसलिए बाबा की जो जो बातें प्रैक्टिकल में हमने अपनी आंखों से देखी, उसको कुछ आप सबके सम्मुख और शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा बहुत कम समय में ही कर्मातीत बन गए। कितने वर्ष में बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया? कितने साल लगे बाबा को? सिर्फ 33 वर्ष, उससे भी कम, क्योंकि 1936 में बाबा को ज्ञान मिला और 1969 में तो बाबा जनवरी 18 जनवरी 1969 को तो बाबा ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए ऐसा क्या बाबा के अंदर था, उनका विशेष ऐसा कौन सा पुरुषार्थ था जो कि उनको इतना जल्दी उसने कर्मातीत बना दिया। तो बाबा के सम्मुख जब कोई भी जाता था, भक्ति मार्ग में तो हम कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा को, वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान में भी कहते हैं, लेकिन कैसे अनुभव हो कि वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है? क्योंकि शिव बाबा तो है निराकार, हम सब साकार रूप में हैं। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा इन सब गुणों की प्रैक्टिकल में अनुभूति कराता था। बस बाबा के सम्मुख जो भी जाता था, इतना प्रेम से, बाबा आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, बाबा के ऐसे दोनों हाथ फैल जाते थे, आओ, और हम लोग जैसे चुंबक की तरह खींचते हुए बाबा की बाहों में समा जाते थे। इतना बाबा के अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन था, चुंबकीय आकर्षण, क्योंकि जितना चुंबक शक्तिशाली होता है उतना ही वो किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो बस बाबा के नैनों में आओ मीठे बच्चे, और कोई भी देहधारी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, देह भान को भूल के एकदम खींच के चला आता था। जब हम बाबा की बाह में आ जाते थे, बस एकदम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, और फिर बस थोड़े समय उस स्थिति का अनुभव करते ही थे, फिर बाबा ऐसे थपथप आओ बच्चे मीठे, जैसे बाबा फिर से देह में लाने का पुरुषार्थ, आओ आओ बच्चे, थोड़ा हल्के हल्के, बस बाबा का स्पर्श ही ऐसा होता था, ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता बस हमें थपथपा रहा है। फिर आते थे बाबा, नाम पूछते थे, टोली खिलाते थे, उसके बाद थोड़ा हालचाल पूछ के एक बाबा के वहां से जाता था, फिर दूसरा आता था, सभी का ये अनुभव होता था जैसे हम अशरीरी हो गए। तो अभी तो देखो हमें कितना अशरीरी और विदेही होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन बाबा के नयन में ऐसा चुंबकीय आकर्षण था। और उसका कारण क्या था कि बाबा ने अपने को पुरुषार्थ करके इतना आत्मिक स्थिति में स्थित कर लिया था कि जिसको भी बाबा देखते थे, दृष्टि देते थे, बाबा का ऑरा, लाइट का, बाबा के वाइब्रेशंस ऐसे होते थे, देहभान को भुला देते थे। हम सभी ने जीवन कहानी में पढ़ा है ना, शुरू में जब बाबा को ये हुआ आप आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, बाबा ने लिख लिख के पक्का किया मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, जो बाबा के लौकिक, पत्नी का नाम जसोदा था, निर्मल शांता दादी, बच्ची नारायण लड़का, आदि आदि। तो एक बार को ये इंट्रोस्पेक्शन करें, अंदर झांक करके देखें कि सुनते तो हम भी है, रोज मुरली में आता है अपने को आत्मा समझो, लेकिन जितना सीरियसली सिंसियरली बाबा ने अपने को पक्का किया लिख करके, अभ्यास कर करके, और उसका परिणाम क्या होता था की बस बाबा के सम्मुख जो भी जाता था वो विदेही हो जाता था, क्योंकि बाबा खुद विदेही स्थिति में। एक तो ये आवश्यकता है हम सब लोगों को रोज अपने अंदर चेक करने की कि मैं वास्तव में जिसको भी देखूं आत्मिक भाव से देखूं, वो आत्मा भी देह का वाहन भूल जाए, आत्मिक स्थिति में स्थित होके और बस बाबा की तरफ उसका बुद्धि योग लग जाए। दूसरी बात जो बाबा ने पिछले कुछ वर्षों से हम बच्चों को होमवर्क भी दिया हुआ है, कौन सा होमवर्क विशेष दिया हुआ है, जो मन से जो बाबा हमेशा कहता है, एक तो बाबा की डायरी में ये आत्मा का मैं आत्मा हूं ये पक्का किया था, और दूसरा बाबा की जो डायरी है उसके अंदर रोज अपनी क्या करो, दरबार लगाओ, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। अर्थात सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कौन सी, बुद्धि और संस्कार की, रोज इनकी दरबार लगाओ। कैसे लगाई जाती है दरबार, वो बाबा के दूसरे एक लेटर में हम लोगों को बहुत वर्ष पहले 25-30 साल पहले एक लेटर दिया था हमारे एक वरिष्ठ भाई ने, आनंद किशोर दादा ने। तो बाबा ने कैसे अपने मन की दरबार लगाई, बुद्धि की दरबार लगाई, कैसे उसे ऑर्डर किया, गौर से सुनना आप। बाबा ने कैसे मन को, अभी भी हम भक्ति मार्ग में जैसे कहते चले आ रहे हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम ये करना बोलना तो नहीं चाहते थे ये शब्द मुंह से निकल गए, हम ये करना तो नहीं चाहते थे ऐसा हो गया, बस मन को दोषी दे देते हैं, मन बड़ा चंचल है। बाबा ने कैसे मन को वो करा, वो लेटर लिखा हुआ, क्या लिखा था बाबा ने उस लेटर में, मन को एड्रेस करके, हे मन मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू मंत्री ने मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया, तू बलशाली हो गया, मैं आत्मा राजा कमजोर हो गया, मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा चलता रहा, लेकिन हे मन अब मैं तुझे कह देता हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। ये मन, तो मन को बाबा ने ये लेटर लिख करके मन से बातें करी, उसे सावधान किया कि मैं राजा हूं, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे आदेश पर नहीं चलूंगा। ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को भी लेटर लिखा, पत्र लिखा, हे बुद्धि तू भी मन के कहने पर, मन के साथ साथ, मन के पीछे पीछे भागती रही, मैं राजा होकर भी तुम्हारे वशीभूत हो गया, तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना कमजोर कर दिया, तुम जिधर चाहते थे उधर मुझे ले जाते थे, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन हे बुद्धि अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि मैं तुम्हारे कहने पर अब नहीं चलूंगा, क्यों, क्योंकि मैं राजा हूं, बुद्धि तू सेनापति है, मन मंत्री, बुद्धि सेनापति, संस्कार सैनिक, और ये संस्कार पुराने संस्कार ये सैनिक भी कभी विद्रोह कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इनका सेनापति ही विद्रोह कर देता है बुद्धि। तो इसीलिए बाबा ने सबसे पहले मन को बुद्धि को अपने कंट्रोल में किया, और हम अगर अपने स्वमान में स्थित होकर के अगर मन को कोई ऑर्डर करते हैं तो मन उस बात को मान लेता है, लेकिन जब हम स्वमान में स्थित नहीं होते हैं और किसी शक्ति का आह्वान करते हैं, जब कोई परिस्थिति होती है सहन शक्ति आओ समाने की शक्ति आओ, समेटने की शक्ति, और नहीं वो महसूस होती कि वो नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम अपने समान में स्थित होके उसे ऑर्डर नहीं करते। तो बाबा ने ये पहले सिखाया, पहले करके दिखाया, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में भी शुरू से ये लिखा हुआ है। क्या? मन के लिए, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन के लिए कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी मन को ही गीता में कहा है, मन मना भव, तन मना भव या धन मना भव या संबंध मना भव नहीं, मन मना भव। तो सारा खेल ही मन का है। और इसीलिए बाबा कहता है, रोज अपने इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाओ और देखो कि आज मेरे कहने पर ये कितना चले। आज ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं चाहता था और मेरे विरुद्ध न चाहते हुए भी इन्होंने कोई संकल्प किया, कोई निर्णय लिया, कोई कर्म किया, नहीं। रोज इनकी दरबार लगाएंगे, रोज चेकिंग करेंगे, तो ये हमारे कंट्रोल में सहज आ जाएंगे। तो ये बाबा करता रहा। इसीलिए बस क्या होता था, बाबा शुरू में तो हमें याद है कि जब हम पहले ज्ञान में 1961-62 में जब आए, बाबा के पास जाते थे, बाबा हमें समय देते थे, हमारी बात सुनते थे, और काफी कोई प्रश्न होता था उसका समाधान करते थे, सेवा के लिए डायरेक्शन देते थे, या ये सर्विस करो, ऐसे करो, वहां जाके इस विषय पर करो, आदि आदि काफी डिटेल में बाबा समय देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा था, बाबा हर विस्तार को समेटते जा रहे थे। हमें याद है पहले ये समय देते थे और बीच में जब 64-65 में हम लोग मिलते थे, बस तब बाबा के पास गए, बाबा थोड़ा सा सुना और सुन के ही बाबा कहते थे, हाँ बच्चे, बाबा समझ गया। अरे बाबा, अभी तो हमने कहना शुरू ही किया है कि नहीं नहीं बच्चे, बाबा समझ गया, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा थोड़ा सा बाबा समय देते थे। लेकिन सबसे विचित्र बात तो ये देखी, जब 17 और 18 जनवरी को हम बाबा के पास थे और जब बाबा अपनी कर्मातीत अवस्था के बिल्कुल निकट थे, तो क्या देखा, हम आए थे बहुत दूर से और 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए थे, 17 और 18 जनवरी को बाबा के साथ साथ थे। बस हम बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से हम ये बात पूछेंगे ऐसा, तो बस मन में संकल्प है, ये बात बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने जरा सा ऐसा दृष्टि दिया और दृष्टि देते, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें प्रश्न बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, मन में जो संकल्प होता था तुरंत उसे पढ़ के बाबा उसका समाधान दे देते। एक बार हुआ, दो बार, तीन बार, चार बार, 6-7 बार जब इन 2 दिन में ऐसा हुआ, क्योंकि उस समय बहुत पार्टियां नहीं थी, बस बाबा थे और दो तीन लोग और थे, बाबा से कई बार मिलने का मौका मिला और हर बार ऐसा होता था, बड़ा आश्चर्य है कैसे बाबा मन के अंदर की बात बोले अभी नहीं, एक अक्षर कैसे जान लिया। ये है कर्मातीत अवस्था का लक्षण, जिसे ही कहा गया है, बाबा हमेशा कहते हैं हम बच्चों को भी, इच्छा मात्रम अविद्या। अगर हमारे मन में अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, अपने से, संबंधियों से, तन मन धन सेवा से संबंधित कोई भी, इवन शुभ इच्छा भी हो, इच्छा तो इच्छा ही है। बाबा कई बार कहते हैं, इच्छा क्या नहीं बनने देती, अच्छा नहीं बनने देती। तो ये भी इच्छा न हो किसी व्यक्ति विशेष का उत्थान हो, उसका बुद्धि का ताला खुले, हमारी सेवा में ये वृद्धि हो आदि आदि नहीं। सबके लिए वसुधैव कुटुम्बकम, सबके लिए समान भावना। और जब कोई इच्छा विशेष नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या हम हो जाते हैं तो क्या होता है, तो हम दूसरे की इच्छा को तुरंत पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और उसकी इच्छा का समाधान कर सकते हैं। यही तो भक्ति मार्ग में कहा है, भक्त भगवान के सम्मुख जाता था, बस भगवान ने दर्शन दिए, भक्त ने अपनी इच्छा रखी कुछ, बस भगवान के मुंह से क्या निकलता था, बस तथास्तु, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अभी ये ही पार्ट प्रैक्टिकल में हमने देखा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू ये प्रैक्टिकल पार्ट चलाया। और जब जितना जितना हमारा भी अपने मन के ऊपर, विचारों के ऊपर नियंत्रण होता जाता है, मन जीते जगत जीत जो कहा है ना, उतना उतना हम कर्मातीत अवस्था बढ़ते चले जाते हैं। और ये बाबा का प्रैक्टिकल में देखा। और क्या देखा साथ में, हाँ देखो बाबा का, अब बाबा कहता है ना, मैं तुम बच्चों को डबल इंजन मिले हुए हैं, एक शिव बाबा एक ब्रह्मा बाबा। अब शिव बाबा तो निराकार है, इस संसार में जो भी बात होती है, ब्रह्मा बाबा तो यहीं का था ना, सब सामना उसे करना पड़ता था। इसने कई बार ब्रह्मा बाबा को बस बहुत खांसी भी आती थी। तो बात हो रही थी, ब्रह्मा बाबा भी वृद्ध तन था, 93 इयर्स की आयु थी। बाबा को कई बार खांसी भी कई बार आती थी और लगता था जैसे खांसते खांसते बाबा भी काफी जैसे ना विहल हो रहे हैं। तो लेकिन दूसरे ही क्षण देखो, बस अभी लगता था ऐसा, अब दूसरे ही क्षण बच्चे बस देखो ये खांसी है ना, ये कौन है पता है, ये बाबा की क्या है, सखी है बहुत। इतने हंसी में देखो ये बाबा की सखी है। शिव बाबा को कई बार ये बाबा बोलता है, ब्रह्मा बाबा अपने लिए, कि बाबा मेरा इस ये जो मेरी सखी है इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, ये मेरे साथ रहती है ये खांसी सखी। तो शिव बाबा क्या जवाब देता है, बच्चे ये तो तुम्हारा अपने कर्मों का हिसाब किताब है, इसमें बाबा कुछ कंसेशन नहीं कर सकता, कुछ नहीं, ये तो तुम्हें भुगतना ही है, ये हिसाब तो चुकतू करना ही है और बस। तो जब ब्रह्मा बाबा को भी कोई कंसेशन नहीं शरीर के हिसाब किताब से, तो आपको या हमें किसी को कोई कंसेशन होगा, कोई नहीं होगा। जो भी इतने अनेक अनेक जन्मों में जो भी कर्म किए हुए हमने, उसका हिसाब तो हमें चुकतू करना ही है, उसे क्यों ना हंसी खुशी हंसते हंसते चुकतू करें जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे। आप में से गए होंगे माउंट आबू, देखा होगा, हिस्ट्री हॉल है ना, तो हिस्ट्री हॉल में ऐसे तीन संदलियां रखी हुई हैं और पास में ट्रांसलाइट का, श्री कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र रखा रहता था। तो बस एक तरफ बाबा को खांसी आती थी, खांसी के बाद भी तो बाबा, अरे बच्चे कल बाबा जाके देखो ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, बस क्या दुनिया होगी, कितनी दुनिया, वहाँ कोई शारीरिक व्याधि नहीं होगी, कोई दुख रोग शोक कुछ नहीं होगा, बच्चे शिव बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं, खुशी इतनी होनी चाहिए, बस गम को खा जाए, बहुत खुशी हो, खुशी में क्या करना चाहिए, खग्गियां मारनी चाहिए। फिर बाबा कहता था कई बार, बच्चे जानते हो खग्गी कैसे मारते हैं, तो एक बार हम भी बैठे हुए थे, हमने कहा नहीं बाबा देखा नहीं, ये सिंधी शब्द है, तो बाबा करके, अरे बच्चे नहीं जानते खग्गिया, वो कल बाबा, बाबा जाके कल मैं जाके ऐसा बनूंगा कृष्ण, खुशी में इतना चेहरा बाबा का ऐसा हो जाता था कि सारा जैसे कि ना देखने वाले भी सब प्रेम भाव से विभूत हो जाते थे। तो ऐसा अगर कभी हमें भी शारीरिक व्याधि आए, कोई रोग हो शोक हो, कोई स्वभाव कोई संबंध का कोई भी दुख की बात हो, उसको हम किस प्रकार से खुशी में परिवर्तित कर दें, एक एक रोम रोम से अंग अंग से खुशी ऐसी झलकनी चाहिए कि किसी को ये भाव ही न रहे कि इनको कोई शारीरिक व्याधि है, किसी प्रकार का दुख है। प्रत्यक्ष बाबा से ये देखने को मिलता था। और क्या देखा बाबा का, बाबा के पास जब जैसे अभी भी पार्टियां आती है ना, और दादियों के पास बहने ले जाती हैं, टीचर दादियों से मिलाते हैं, दादियां टाइम देते हैं कि भाई अच्छा 10 बजे ये पार्टी आना, ऐसी बाबा के समय भी भाई 10 बजे चलो कलकत्ता की पार्टी आए, 10:30 बजे बम्बई का पार्टी, 11 बजे दिल्ली का, 11:30 बजे कोई अहमदाबाद का, ऐसे अलग अलग टाइम होता था। और नेचुरली पार्टी जाते थे, ब्राह्मणी टीचर ले जाती थी। तो देखो बाबा कैसे एक एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, सफल हो, बस टीचर ब्राह्मणी पार्टी लेके जाती थी, देखते थे बाबा या तो अपने हिस्ट्री हॉल में पार्टी, जब थोड़ा बड़ी होती थी 15-20 लोग होते थे तब तो 20-25 लोगों की पार्टी बहुत बड़ी समझी जाती थी, तो उस समय वहाँ हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, या 4-5 भी अगर 3-4 होते थे तो कई बार झोपड़ी में भी बाबा जो हट है वहाँ मिलते थे। और कभी कभी अगर 2-3 ही ऐसे होते थे तो कभी कभी बाबा अपने कमरे में भी मिलते थे। तो बस टीचर पार्टी के साथ लेके जाती थी, देखा बाबा बस बैठे हैं अपने में मगन जैसे है, आंख खुली हुई है लेकिन शारीरिक रूप से बाबा यहाँ है और बुद्धि से जैसे दूसरे लोक में है। जो बाबा ने हम बच्चों को भी 5 स्वरूप बताए हैं, लगता था जैसे उस स्वरूपों में कभी परम धाम में, कभी फरिश्ता रूप में, कभी नई दुनिया का स्थिति में आदि आदि ऐसे। तो कई बार टीचर जाती थी, सोचती थी बाबा देखेंगे बताएंगे बोलेंगे, तो बस बाबा जैसे अपने में मग्न है, आंख भी खुली हुई है लेकिन शारीरिक रूप से यहाँ, बुद्धि से कई बार। और फिर टीचर भी बोलती थी बाबा बाबा, तो कई बार बाबा को जैसे ना जैसे जर्क सा भी लगता था जैसे, और एकदम बाबा जैसे जो बाबा कहता है ना, ऐसा अभ्यास हो कि 1 सेकंड में देह से निहारे, 1 सेकंड में फिर से देह में आके आए, पार्ट बजाया यहाँ पर, और बस जब यहाँ का पार्ट पूरा हुआ फिर इस देह से निहारे होके बाबा के साथ लगन में मगन हो जाए, तो ऐसा देखने में मिलता था। फिर बाबा सडनली जैसे ना देह में, अच्छा बच्ची आ गए, आओ पार्टी लाए हो, आओ आओ बैठो। फिर बाबा 1 बाय 1 हर एक से मिलता था, टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, एक एक बच्चे से मिलके फिर इस तरीके से वो पार्टी मिलके जाती थी। और फिर जो पार्टी मिलके गई और दूसरी पार्टी के आने में मानो 5-7 मिनट का समय भी है, तो क्या होता था इतनी देर में फिर बाबा जैसे देह से न्यारा हो जाता था। तो एक ये अभ्यास की बहुत जरूरत है इस समय कि जब चाहे हम देह में आए, देह में आके पार्ट बजाएं और उसके बाद फिर देह से हम न्यारे हो जाए, और देह से न्यारे होके फिर हम अपनी आध्यात्मिक कमाई जो बाबा कहता है वो कमाई करते रहे। एक प्रैक्टिकल में ये देखा था बाबा को, और बाबा को क्या देखा था, देखा जो बाबा कहता है ना कि अंत समय ऐसा होगा आपके सम्मुख बहुत आएंगे, अनेक प्रकार की इच्छाएं लेकर आत्माएं आपके पास आएंगी, लेकिन आपका ऐसा स्वरूप हो उन सब आत्माओं को जैसे मन वांछित वरदान मिल जाए। समय ऐसा होगा कोई आत्मा कह नहीं पाएगी, न बोलने का समय होगा न सुनने का समय होगा। और ये प्रैक्टिकल में देखा किस प्रकार से बाबा एक एक बच्चे को ना मन की इच्छा, हम अपना अनुभव सुनाते हैं। 18 जनवरी अंतिम दिवस बाबा अपना मुरली चला रहे हैं, हिस्ट्री हॉल में हम भी सामने बैठे हुए हैं, बाबा की मुरली चल रही है और बस सब मुरली का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बस बाबा की इतनी फोर्सफुल मुरली थी 18 जनवरी की रात्रि क्लास, क्योंकि संपूर्ण कर्मातीत अवस्था थी। बस बाबा मुरली चला रहे हैं, एक बार भी बाबा को पूरी मुरली में उस दिन खांसी नहीं आई, एक बार भी कोई गला साफ करने की या ऐसे डिस्टरबेंस नहीं हुआ। और जो इस बात का प्रतीक है कि जब कर्मातीत अवस्था को आत्मा प्राप्त कर लेती है तो क्या होता है, शरीर के सब कर्म भोग के ऊपर योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो बस बाबा मुरली चला रहे हैं और एक बार भी खांसी नहीं आई, बड़ी फोर्सफुली मुरली चल रही है। सुनते मुरली सुनते सुनते ही हमारे मन में एक विचार आया, देखो कैसे मन का विचार मन में आया, वहां पर आया कुछ कहा नहीं, भाई बाबा कुछ हमारे लिए बोले, पुरुषार्थ की बात बोले। बस मन में संकल्प आया, कुछ कहने का भी मार्जिन नहीं, बाबा की तो मुरली चल रही है, लेकिन जो कहते हैं भक्त की इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं, तो इधर संकल्प आया और उधर बाबा तक पहुंचा होगा, और तुरंत ही बाबा ने मुरली में नाम लेके तुरंत ही कई महावाक्य उच्चार दिए, जो कि हमारे जीवन के लिए हमेशा के लिए ना गाइडलाइन बन गए। और बस वो महावाक्य उच्चारे बाबा ने और हमारा मन तो बस एकदम गदगद हो गया, कैसे मन के अंदर संकल्प ही था और जो कहते हैं ना कि मन की बात तुरंत ही भगवान तक पहुंचती है। भगवान भक्ति मार्ग में कहते जानी जानन हार है, दिलों की बात जानता है। वो यही के ही उदाहरण है किस प्रकार से बाबा ने वो बात जानी, और यही पार्ट अब हम सब बच्चों के द्वारा चलना है। हमारे सामने बहुत आत्मा आएंगी, लेकिन हम उनकी इच्छाओं को तब जो जैसी भावना लेकर आएगा उसकी उस भावना को हम पूर्ण कर सकेंगे। आप सबने सुना है ना, भक्त बाबा की जीवन कहानी किताब में भी पढ़ा होगा। शुरू में जब ज्ञान में सब आए तो एक परिवार आता था सरदार सिख का, तो परिवार आता था लेकिन वो सरदार जी नहीं आते थे, तो वो बड़े एंटी थे, विरोधी थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि मैं बाबा को बस छुरा लेके गए, मैं इससे बाबा को नुकसान पहुंचाऊंगा। बस गए बाहर और बहन ने उसने कहा साधारण रीति से मुझे बाबा से मिलना है। आते थे तो बहन उन्हें ले गई बाबा के पास, और बाबा से परिचय करा के बहन फिर अपने काम में लग गई। और जब उन सरदार जी ने देखा वो अकेले हैं और बाबा और वो ही हैं, तो उसने अपना छुरा निकाला और छुरा निकाल के जैसे ही बाबा पे वार करने जा रहा था, क्या उसे साक्षात्कार हुआ गुरु नानक देव जी का। इसे हमेशा ब्रह्मा बाबा से सबको कौन से साक्षात्कार होते थे, ब्रह्मा बाबा कौन सी आत्मा थी, श्री कृष्ण की, नारायण की। सब बाबा को देखते थे, ध्यान में चले जाते थे, कृष्ण का साक्षात्कार विविध रूपों में, नारायण का साक्षात्कार, स्वर्ग का, अलग अलग साक्षात्कार होते थे और सब खुशी में नाचते थे। लेकिन शिव बाबा जिसके पास ही साक्षात्कार की चाबी है, ब्रह्मा बाबा के पास भी नहीं है, शिव बाबा के पास साक्षात्कार की चाबी। तो भक्ति में भी कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इस रीति से जो जैसी भावना, अब वो सरदार जी आए और उनको श्री कृष्ण या नारायण का साक्षात्कार नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उनकी उनमें भावना ही नहीं थी। अगर श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो शिव बाबा ने उनको गुरु नानक देव का साक्षात्कार कराया, और जैसे उसे साक्षात्कार हुआ बस उसकी आंखों से तो आंसू निकलने लगे, पश्चाताप होने लगा, अरे वाह गुरु जी, मैं क्या नुकसान, आपको मारने आया था, मैं कितना पापी हूँ, नीच हूँ, मुझे क्षमा करो, माफ करो। बस बाबा के पैरों पर गिर गया, छुरा निकाल के उसने एक तरफ रख दिया, बस बहुत रोने लगा और पश्चाताप करता हुआ और क्षमा मांग करके वहां से फिर वो चला गया। तो अंत समय में यही होगा, अनेका अनेक आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी। जो जिसका इष्ट देव को मानती है उसके साक्षात्कार की इच्छा लेके आएगी, चारों तरफ त्राही त्राही मची होगी, दुख अशांति होंगी, प्रकृति के पांच तत्वों का कहर होगा, कहीं पर सिविल वार होंगी, बहुत अति दुख के जहां पर चारों तरफ लक्षण होंगे, बहुत ही दुख, लोग भगवान के साक्षात्कार की इच्छा लेके आएंगे। और जैसे ही जो इच्छा लेके आएगा, हम तो उसके सामने एक हैं, दस आत्माएं आई और दस अपने अपने इष्ट देवों की इच्छा लेके आई, तो कैसे होगी उनकी वो इच्छा पूरी, क्योंकि वो जिस इष्ट देव की इच्छा लेके आएंगे, अगर हमने जितना अपने मन को जीता हुआ होगा, मन जीते जगत जीत, उनके मन के भावों को परख सकेंगे। और शिव बाबा हमारे द्वारा उनको वो साक्षात्कार कराएगा जिसकी भावना लेके वो आए होंगे, और फिर उन्हें तृप्ति का अनुभव होगा, और तभी तो हमारे से बिल्कुल प्रसन्न तृप्त होके आत्माएं जाएंगी। तभी तो भक्ति मार्ग में हमारे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बना के हमारी मूर्तियों की स्थापना करके तभी तो वो हमारी पूजा करेंगे। तो यहां पर हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी आत्मा जो हमारे सम्मुख आए उसकी हम हर इच्छा को पूर्ण कर सके। स्थूल इच्छा की बात नहीं है। और ये बाबा का लास्ट में प्रैक्टिकल में देखा, बस जैसे मैंने बताया ना कि संकल्प आया, बाबा ने वो इच्छा पूर्ण की, उसके बाद बाबा मुरली पूरी हुई। अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, कह के बाबा गए। और बस उस दिन बाबा को बस बाहर जाने की, जैसे वो ही न हो, शिव बाबा को मालूम था कि आज इनके साकार माध्यम के द्वारा ये मेरा अंतिम साकार मिलन है इस कल्प का। तो बस बाबा बार बार दृष्टि देते थे सबको, और बार बार बाबा की दृष्टि आके दादी प्रकाशमणि जी की तरफ रुक जाती थी। बार बार बाबा उनको बहुत देर तक दृष्टि देते थे, और फिर सभी को थोड़ा थोड़ा और दृष्टि देते थे, और बार बार दादी जी को जैसे शक्तियों से संपन्न बाबा ने किया। और वो संपन्न करके बाबा जैसे बाहर गए, अच्छा ऐसे बाबा हाथ हिला के बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, हिस्ट्री हॉल से गए। और फिर तो हम सब ने सुना है कैसे दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए, शक्तियों की विल करते हुए बाबा ने ये संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। इस पुरानी देह का त्याग करके बाबा व्यक्त फरिश्ता बन गए। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात उसके बाद कि ये 18 जनवरी की रात को बाबा ने ये शरीर छोड़ा। बस जैसे ही सबको इन्फॉर्मेशन टेलीफोन के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा भेजते जा रहे थे, सब तरफ से समाचार आते जा रहे थे, बाबा का शरीर रखो, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो 18 की रात बाबा का शरीर रखा रहा, 19 को सारा दिन, 19 की रात, 20 को सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी, 21 जनवरी को भी दोपहर के बाद बाबा का ये अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात कि इतना 65-70 घंटे तक बाबा का शरीर रखा रहा, लेकिन शरीर में कहीं भी अकड़न नहीं आई। नहीं तो आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है तो 4-6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है बिल्कुल। जब बाबा को अंतिम स्नान भी कराया संस्कार करने से पहले, बाबा का शरीर ऐसा ही फ्लेक्सिबल, बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ चेहरा, नहीं तो चेहरा भी काला पड़ जाता है, शरीर काला पड़ जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। कोई भी बाबा को ना इंजेक्शन दिया गया, ना कोई केमिकल लेप लोशन लगाया गया, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी बाबा का शरीर, ये इस बात का सूचक है प्रकृति के 5 तत्वों पर विजय का प्रतीक। बाबा ने इन 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर पर को, बाबा ने अपने योग बल के द्वारा इन 5 तत्वों को भी इतना पवित्र बना दिया कि वो अंत तक भी उन तत्वों ने पूरा साथ दिया। और जब अंतिम संस्कार किया गया, बिल्कुल ऐसा ही लगता था बाबा जैसे लेटे हुए हैं, और चमकता हुआ शरीर, और बस हमेशा की तरह बाबा उठेंगे और हाथ फैला के कहेंगे, आओ बच्चे, आओ मेरे मीठे बच्चे, सिकी लद्दे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, आओ बच्चे, बिल्कुल ऐसा चमकता हुआ। यह है प्रकृति के तत्वों पर विजय का प्रतीक। और यही बाबा हम बच्चों को भी चाहते हैं कि हम बच्चे योग तो कर ही रहे हैं, अपने को पावन बना रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं दूसरे मनुष्य आत्माओं की, उनको भी बाबा का संदेश दे रहे हैं, लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों को भी हम इतना पवित्र बना दें, इतना महान बना दें। जैसे बाबा ने कहा ना अंत में छुट्टी, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। यही महाभारत में किसका गायन है? इच्छा मृत्यु का, भीष्म पितामह का। हम भी जब जाएं, बस अपनी इच्छा से जाएं, हाँ बाबा अब हमारा पार्ट यहाँ पूरा हुआ, हम आ रहे हैं। आपने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी ले रहा है, विदाई, और इतना हमारा अपने 5 तत्वों के ऊपर, ये क्योंकि शरीर ही हमारा आत्मा का सबसे निकट का साथी है, तो कैसे हम इन 5 तत्वों को भी अपना मित्र बना लें कि अंत समय में ये हमारा पूरा सहयोग करे। कोई भी तत्व जो है हमें दुख अशांति देने का मृत्यु का कारण हमारा न बने। कैसे होगा? इन तत्वों को भी जब हम अपना मित्र बना लेंगे। कैसे मित्र बनाए? क्योंकि मित्र ही मित्र की मदद करता है। मित्र कभी मित्र के प्राण नहीं लेता। मित्र हमेशा मुश्किल के समय दोस्त की मदद करता है। तो मानो अंत में बाबा ने कहा बहुत धरती के भूकंप आएंगे, बहुत धरती हिलेगी, चारों तरफ बिल्डिंग गिरेंगी, अब ये समझो हाहाकार मचा हुआ होगा। तो हम धरती को कैसे मित्र बना लें? मित्रता किनके बीच में होती है? किनके बीच में मित्रता होती है? जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते हैं, उनके मित्रता होती है। कोई शराबी होगा, उसकी शराबी से मित्रता होगी। कोई अच्छा भक्त आत्मा होगा, उसके भक्त आत्मा से मित्रता होगी। ऐसे ही प्रकृति के तत्वों से हम मित्रता कैसे कर लें? तो धरती के अंदर सबसे बड़ा गुण कौन सा है? पृथ्वी के अंदर कौन सा गुण है सबसे बड़ा? सहनशीलता तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा गुण है दातापन का। पृथ्वी दाता है, हमेशा देती है। एक बीज आप पृथ्वी में बो दो, पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे और कई गुना करके पृथ्वी देती है। ऐसे ही बाबा कहता है अगर हमने भी ना पृथ्वी की तरह, धरती माता की तरह दातापन का गुण धारण किया होगा, हमारे सम्मुख जो भी आए उसको प्रेम का, शांति, आनंद, शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह, आदर, सत्कार, जिन चीजों में कोई खर्चा नहीं होता, कोई उसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन ये सब अगर हम देते चलेंगे, पृथ्वी की तरह दाता बन जाएंगे, तो क्या होगा? ये पृथ्वी कभी भी हमारे दुख का, शांति का, मृत्यु का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि पृथ्वी को हमने अपना मित्र बना लिया। और ये पृथ्वी अंत समय में जो बाबा ने कहा ना, चारों तरफ हाहाकार होगा और आप बच्चों के पांव किधर बढ़ेंगे? जहां पर सेफ्टी होगी। ऑटोमेटिकली हमारे पांव उधर की तरफ बढ़ेंगे जहां पर सेफ्टी होगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि अंत समय चारों तरफ कुछ भी हो लेकिन हम बिल्कुल कुशल रहे, बचे रहे सेफ्टी की तरफ, तो जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है वो नहीं, जो ये वॉइसलेस बन जाए। आज टेलीफोन उसकी मदद से, मोबाइल और टेलीफोन सबसे कहीं से कहीं बात कर लेते, लेकिन ये है वॉइसलेस कम्युनिकेशन, यानी विकारों से रहित हो जाए आत्मा। तो ये जितना होगा उतना हम जैसे धरती को मित्र बना लिया। धरती में सहनशीलता होती है, ऐसे हम सहनशीलता का गुण धारण करें। तो ये तो हम धरती के अर्थ भूचाल से बचने का हुआ पानी। दूसरा विनाश का एक कारण है जल। चारों तरफ बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, ये तो ये अपने आगोश में हमें न समा ले, हमारे मृत्यु का, दुख का, शांति का कारण न बने। तो जल तत्व का कौन सा सबसे बड़ा गुण है? हा? शीतलता, वो भी है बहुत अच्छा, लेकिन शीतलता से भी बड़ा गुण है धरती जल का, एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। जल को जिस चीज में लो, गिलास में लोगे गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लोगे कटोरी में हो जाएगा सेट, थाली में लो थाली में फैल करके सेट हो जाएगा, यहां तक कि चम्मच में लो चम्मच में भी आज हर जगह जल सेट हो जाता है। एडजस्टमेंट का गुण, फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसी हमारा भी स्वभाव संस्कार ऐसा हो ना जो हर आत्मा के साथ हम सेट होके चल सकें। ऐसा ना कहे कि इनके साथ तो सेट होना बड़ा आसान है, इनके साथ मुश्किल है, स्वभाव नहीं मिलते। नहीं, हर एक के साथ। बाबा का यही देखा, बाबा बच्चों के साथ बच्चे जैसा, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग जैसा, जवानों के साथ जवान जैसा हो जाता था। और बस बिल्कुल ऐसा लगता था बाबा मुझे जितना प्यार करता है उतना किसी को भी प्यार नहीं करता, सबसे ज्यादा बाबा मुझे प्यार करता है। हरेक को ऐसा अनुभव होता था। यही बात हरेक को अब हमसे अनुभव होनी चाहिए कि ये जो है ना बहुत अच्छे इंसान है, जितना आदर सत्कार स्नेह हमें देते हैं बस इतना शायद ये किसी को नहीं देते। हरेक के मन में हमारे लिए, और जब हमारे लिए ये बात होगी ऑटोमेटिकली बाबा के लिए, संस्था के लिए, सभी बहन भाइयों के लिए, और यही बाबा की प्रत्यक्षता का साधन बनेगा। तो जल की तरह, और देखो जल बहता रहता है, जल जहां रुक जाता है वहां क्या होता है, कीड़े मकौड़े मच्छर पैदा हो जाएंगे। ऐसे अगर हमारी प्रोग्रेस कहीं रुक जाती है, उन्नति, तो जरूर ये घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब चीज हमारे अंदर पैदा हो जाती है। यही मक्खी मच्छर दुर्गंध देने वाली चीजें हैं। तो इसीलिए जल की तरह हम अपने संस्कारों को इतना हल्का सरल बना लें, जो बाबा कहता है अपने संस्कारों को सरल बना लो। जितना सहज सरल होंगे उतना जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करते चलेंगे। ऐसे ही वायु का क्या गुण होता है, वायु हल्की होती है, हर चीज को ऊपर उठाती है। गीत भी है ना हमारा, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ऐसे वायु की तरह हम सदा हल्के रहे। कई बार कोई पेपर आता है, परिस्थिति आती है, हम भारी हो जाते हैं, बात करना, कोई खाना पीना वो अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति भारी हो जाता है। बाबा कहता नहीं, वायु की तरह अगर हम हल्के रहेंगे तो अंत समय में चाहे जितने साइक्लोन आए, तूफान आएंगे, बहुत पवन, इतना बहुत हाई स्पीड से चलेगा, उड़ेगा, पेड़ उखड़ेंगे, सब तरफ विनाश लीला होगी, लेकिन यदि पवन की तरह हमने अपने को हल्का बनाया हुआ होगा तो ये वायु हमारे दुख और अशांति मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। इसी तरह सूर्य का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, अग्नि का, अग्नि हर चीज का रूप परिवर्तन कर देती है। अग्नि में जो चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए बाबा अभी कह रहा है योग करो, लेकिन कौन सा योग करो, ज्वालामुखी योग। ऐसी ज्वाला प्रदर्शित हो, बाबा ने कहा है अंत में आत्मा आएंगी आपके सम्मुख, रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, बस दुखी आत्मा आए और सुख के अनुभव में लहराती हुई, इतना सुख स्वरूप होके चली जाए, उसे भूल जाए कि मैं कभी दुखी आत्मा थी। उसका रूप हम बदल सकें, और रूप तभी बदल सकेंगे, देखो सूर्य में भी रूप बदलने की शक्ति होती है ना, अंधकार का, रात्रि का रूप बदल करके दिन का कर देता है, रात का रूप अगर ठंडी का होगा गर्मी का स्वरूप बदल देता है, मक्खी मच्छर कहीं सीलन होगी, जहां सूर्य का प्रकाश और गर्मी आएगी स्वच्छ वातावरण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ज्ञान सूर्य की तरह हमारा ऐसा स्वरूप हो जाए, हर एक के हम स्वरूप को बदलते चले। और अंतिम पांचवां तत्व कौन सा है, आकाश तत्व। क्या विशेषता है आकाश में, आकाश इतना विशाल है, ऐसे ही बाबा चाहता है हम बच्चों का हृदय भी इतना विशाल हो जाए कि उसके अंदर किसी की भी कमी कमजोरी ठहर न सके, इतनी महानता का गुण आ जाए। ऐसे ऐसे महान, जितने भी महान आत्मा होके गए हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण था, कौन सा, क्षमा का गुण। किसी की भी कमी कमजोरी देखे, वो अगर हमारे मन को कसोटती रहती है, छुपती रहती है उसकी बात, किसी ने अपमान किया, कोई ऐसी बात बोली, वो अंदर छुपती रहती है, इसका मतलब मैंने उस आत्मा को क्षमा नहीं किया। बड़े महान आत्माओं के लिए कहा जाता है क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो व्यक्ति कायर होगा ना वो कभी क्षमा नहीं कर पाएगा, जो महान आत्मा होगी वही क्षमा कर पाएगी। तो आज जाने से पहले हम अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करें, देखें यदि अभी तक भी कोई हमारा मित्र है, संबंधी है, पुराना नया कोई भी व्यक्ति है, उसके प्रति हमारे संबंधों में उतनी मधुरता नहीं है, आज ही हम ये संकल्प लेके उठें कि नहीं, मुझे उस आत्मा को क्षमा करके, मैं महान आत्मा हूं, मुझे भगवान ने चुना है। होता क्या है, हम बाहर की दुनिया को तो माफ कर देते हैं, समझते हैं ये अज्ञानी आत्मा है, इसे मालूम नहीं, लेकिन अपने दैवी परिवार की किसी आत्मा को कई बार हम क्षमा नहीं कर पाते। अगर हम ऐसा करते हैं दैवी परिवार की किसी आत्मा के प्रति हमारे मन में कोई भी बात है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब मुझे भगवान के सिलेक्शन पर डाउट है, संशय है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो अंतिम आत्मा भी है वो भी मेरी एक विशेष आत्मा है, जो वर्तमान समय के कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी ऊंच है, महान है। क्यों? भगवान ने उसे चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी आत्मा के प्रति हमारा ये भाव कभी ना हो, इस आत्मा में ये गुण है, अरे ये 20 साल से ज्ञान में है अभी तक भी इसके अंदर ये क्रोध है, मैं तो 5 साल का ही हूँ, ये तो आत्मा 40 साल पुरानी है, इसके अंदर अभी तक भी ये अवगुण है। नहीं, उस समय वो पार्ट बजा रही, फिल्म भी होती है ना, अब सारे 3 घंटे की फिल्म होगी सबका पार्ट एक जैसा पूरे फिल्म में थोड़ी है, कोई कॉमेडियन है वो हंसाने का पार्ट करेगा, कोई हीरो है वो अपना पार्ट करेगा, कभी रोने का पार्ट आएगा, कभी नाचने का, गाने का, सारे पार्ट अलग अलग होते हैं, वैरायटी होते हैं, और एक ही व्यक्ति भी कई जगह कई अलग अलग पार्ट करता है। तो इस रीति से इस समय वो आत्मा ये पार्ट बजा रही है, लेकिन अपने समय पर इस आत्मा को ऐसा पार्ट बजाना है जिससे भगवान का नाम वाला होना है, और इसीलिए क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है। तो इसीलिए कभी भी अपने दैवी परिवार के ऊपर कभी भी संशय नहीं आना चाहिए कि ये आत्मा ऐसा क्यों पार्ट बजा रही है। नहीं, समय पर अभी ये कमजोरी के वशीभूत है, लेकिन समय पर ये अपना बहुत ऊंच पार्ट बजाएगी। और अंत में ये देखा बाबा का और वो कि जो बाबा कहता है हर परिस्थिति में समान, गीता में भी कहा है ना, हार जीत मान अपमान दुख सुख हानि लाभ सब स्थिति में हमारी मानसिक स्थिति एक जैसी रहे, खुशी में खुश और गम में गम, डाउन, ये तो दुनिया भी करती है, लेकिन हमारा चेहरा सदा कैसा रहना चाहिए? खुशनुमा, मुस्कुराता हुआ। और जितना हमारा खुशनुमा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा यही सेवा का साधन बनेगा, और यही लोग आके पूछेंगे इतने दुख की दुनिया में आपको ऐसा क्या मिला है जो आप इतने खुश हैं। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, देखो बाबा भी कहता है ना, आप बच्चों को भी फूल बनना है। कौन सा फूल? हमारे यज्ञ पुरुषार्थ की यात्रा शुरू होती है कमल फूल से। जब हम ज्ञान में आते हैं पहले दिन पाठ यही मिलता है, कमल फूल किस तरह रहो, रहो दुनिया में कीचड़ में लेकिन प्रवृत्ति में रहो, लेकिन न्यारे रहो। तो कमल फूल हमारी यात्रा का बिगिनिंग है, और अंतिम फूल है गुलाब का फूल। क्यों बाबा ने गुलाब कहा? गुलाब का फूल देखो सब एक दूसरे से पास पास रहते हैं, लेकिन सबका कनेक्शन बीच में जो होता है उसके साथ होता है। थोड़ा गुलाब के फूल को यूं हल्का सा झटका लगा दो सारी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी। एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होता, लेकिन रहती फिर भी एक दूसरे के संपर्क में है, साथ साथ रहती है, लेकिन सबका कनेक्शन होता बीच वाले थुर के साथ ही है। ऐसे ही हमें बनना है अंत समय में ना, रहेंगे हम परिवार में भी दुनिया में भी, दुनिया तो यही रहेगी, लेकिन हम सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ होगा, तो फूल बन करके। इसी बात को किसी शायर ने अंत में ये कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन में हार जीत दुख सुख ये तो लगा रहेगा, जीत कर तो सारी दुनिया ही खुश होती है, लेकिन हमें लगे विजिबली अरे इसका रिजल्ट मेरे अनुरूप नहीं आया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, हमें लगे जैसे ये हार है, लेकिन बाबा ने क्या कहा है, ये हार नहीं है, ये अनुभव कराने के लिए आई है जिससे हम बाबा के गले का हार बन सके। इसलिए आज हम यही संकल्प लेके यहाँ से उठें कि ये प्रकृति के तत्वों को भी ना इनके साथ मुझे अपने, मैंने तो एक एक गुण ही बताया, दो दो गुण, एक दो गुण, लेकिन प्रकृति के एक एक तत्व में इतने गुण हैं, उनके साथ हम अपने गुणों को, संस्कारों को अगर मैच करते चलेंगे तो अंत में ये प्रकृति के तत्व ये हमें कोई भी अशांति दुख क्रिएट नहीं करेंगे, हमें संपूर्ण बनाने में सहयोग देंगे और हम बाबा के, जो बाबा कहता है ना, मेरे नैनों में समा कर मैं तुम बच्चों को ले जाऊंगा, बस बाबा के साथ ही साथ हम सब विजयमाला का मणका बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।